प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चार, लेक्चर नंबर 261। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुं, सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमन करू धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थंकर अने सौ शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धनेय नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं हूँ साम्य निजे नाथ शिव प्राप्ति ही बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये चौथी पुस्तक है, प्रवचन सुधा भाग चार, उसके पृष्ठ संख्या 22 पर हम आगे 22। हाँ देखो, यहाँ शुरुआत करते नए पैराग्राफ से। कल बात आई थी कि भगवान के समोसरण में 100-100 इंद्र आते हैं और तीर्यंच आदि देव मनुष्य सभी वहाँ वाणी सुनने के लिए आते हैं। बात यह हो रही थी कि वाणी के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, अपनी योग्यता से होता है। यहाँ कहते हैं आगे, देखो श्रोता पूछते हैं तो पछी भगवान ने दिव्य ध्वनि एम शुं करवा कहे छे, वो परमाणु की पर्याय है तो भगवान की क्यों कहने में आती है। देखो ये संयोग की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा कहने की पद्धति है। हम कहते हैं घी की बरनी है या चाय की बरनी कहते हैं, ऐसे संयोग देखकर, जैसे हम कहें ये मेरा कपड़ा है, ये मेरे बर्तन है, चांदी के थाली पर आपका नाम डालते हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखते चांदी की थाली, यानी वो जिसका जिसकी है ना वो संयोग, आपके संयोग के आपने पैसे दे के खरीदे तो आपका नाम उसमें डालते हैं। आप कपड़े पहन रहे तो ये आपके कपड़े हैं, आपके बहन के नहीं है, ये कहने की पद्धति है। वो कपड़ा तो कॉटन का हो, सिल्क का हो, जो कुछ है, तो ऐसा ही कहते भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं। उसका समाधान, भगवान ने दिव्य ध्वनि ये निमित्त थी कथन छे, कथन भले निमित्त से हो पर वहां समझना हमारी ड्यूटी है। दिव्य ध्वनि आवाज छे, यानी ध्वनि है, वो आवाज है ना ध्वनि। आ प्रवचन सार लो, प्र अधिक वचन, अनुनाम प्रवचन छे, प्र एटले विशेष है, दिव्य वचनों छे, भगवान के वचन है नी, दिव्य वचन ए अक्षरनी पर्यायो जे छे ते द्रव्य गुण ने अमे जे ऊपर सिद्ध कर्या छे ते द्रव्य गुण थी आ पर्याय रचायेली छे। अक्षर की पर्याय जो है वो तो परमाणु की उसके परमाणु द्रव्य से और उसके गुणों से बनी हुई है। बीजो पुस्तक लखनारो बनावनारो रचनारो कहे कि मैं आ पुस्तक बनायूं तो ए भ्रमणा अज्ञान ने मिथ्यात्व छे, क्योंकि वो तो शब्दों की रचना शब्दों से हुई है। तो लेखक कहेंगे या जो पुस्तक छपाने वाले हमने किया, कथन पद्धति है, पर अगर वो ऐसा ही मानेगा तो एक मिथ्यात्व है उसका, अज्ञान है भ्रमणा है। एने द्रव्य गुण ने पर्याय कोनी छे एने कोना थी थई एनी एने खबर नथी। श्रोता कहते हे सकरना, सकरना ने कर्ण वालो हे कान वालो हूँ कहूँ छू ई सांभळ एम आवे छे। ये शास्त्र का कोई वचन उनको याद आया तो उन्होंने बता दिया। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं सकरना कीधु छे ने हे सकरना, श्रद्धाहीन ने वांदिश ने, वांदिश के वंदिश ने, वंदिश नहीं चाहिए कहते हैं क्या, कहने की पद्धति है वांदिश ने, वांदिश शब्द आता है ठीक है, नहीं वही वंदिश, वंदिश और वांदिश एक ही अर्थ में, वंदन करने के अंत में।
अच्छा,
श्रद्धाहीन ने जो मिथ्या दृष्टि है उसको नमस्कार नहीं मत करो,
वंदन मत करो,
हाँ वो वंदनीय नहीं है। जेने हजी वस्तु नी श्रद्धा नी खबर न मळे ए साधु नाम धरावे। साधु पण अंगीकार क्या बाह्य से, नग्न दिगंबर मुनि थया होय, यानी नग्न दिगंबर भी क्यों नहीं हुआ, परंतु अगर वस्तु की श्रद्धा है नहीं उसके तो वो भी श्रद्धाहीन है और वंदन योग्य नहीं है। वस्त्र सहित वाला तो साधु छे ज नहीं, पण वस्त्र विनाना जे दिगंबर साधु छे ए पण जो एम मानता हो के परनी अवस्था ने करी शकीए के दयादान ना परिणाम नी अवस्था छे मारू स्वरूप छे तो ए बधा मिथ्या दृष्टि छे। दिगंबर साधुपना लिया और कहता है कि नहीं ये तो शुभ राग करो व्रतादि करो इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, ये करते करते मोक्ष हो जाएगा, तो वो भी अभी अज्ञान मिथ्या दृष्टि है वो। और ऐसे जीव वंदन वो उसको श्रद्धाहीन कहा। अहिया शू कहे छे, पर्याय नी शू व्याख्या करी, द्रव्य नी शू व्याख्या करी के विस्तार सामान्य समुदाय अने आयत सामान्य समुदाय ते द्रव्य। गुण के लिए क्या कहा था, द्रव्य जिसका आश्रय है ना। गुण कोने कहिए कि अनंत गुण होवा छता ते एक द्रव्य ने आश्रय रहे तेने गुण कहिए, और वो उस विस्तार के भेद है वो, विस्तार के विशेष हो गए। पर्याय कोने कहिए कि जे द्रव्य ने गुणना लक्षणों वर्णव्या ते द्रव्य ने गुण थी अवस्था थाय तेने पर्याय कहेवामां आवे छे। कहे छे पर्याय द्रव्यों थी तेमज गुणों थी रचायल हुआ थी द्रव्यात्मक पण छे अने गुणात्मक पण छे, अर्थात द्रव्य स्वरूप पण छे अने गुण स्वरूप पण छे। केटली टीका, थोड़ा शब्दों में तो गजब कर्यु छे ने, आहा हा आ सिद्धांत कहवाय जेना एक एक शब्दना गर्भ में अनंत अनंत रहस्य पड़ा छे। ये तो आये सामान्य समुदाय कह दिया, उसमें सारी अनादि अनंत पर्याय आ गए, पूरा क्रमबद्ध का सिद्धांत उसके अंदर आ गया, जितना आप खोलो उतना उसमें से माल निकलेगा। इसलिए कहा ना अनंत अनंत रहस्य पड़ा छे। हम कह लगते ये तो क्या बेसिक बच्चों की बात है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, परंतु उसमें है कितना अंदर माल है न। बीजी बाजू एम कहे छे हे नाथ, वंदे तद्गुण लब्धे, तमारी अमे जे स्तुति करिए छे तो तमने जे गुण प्रकट थया छे। गुण प्रकट होना है ने पर्याय उनकी जो प्रकट हुई है, गुण का प्रकट होना कहो या गुण कहो, पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति है, नियमसार में भी देखा हमने, यहाँ पर भी देखा। तो तमने जो गुण प्रकृति ने जो पर्याय हुई है एवं गुणों मने मड़े, अब मेरे गुण मेरे में है, उनका परिणमन भी ऐसा ही हो, ऐसी भावना है वहाँ भगवान को देखकर। इसको क्या कि भगवान ने जैसा प्रकट किया है पर्याय में, क्योंकि स्वभाव तो जैसा उनका, जैसा द्रव्य उनका वैसा द्रव्य मेरा, जैसे गुण उनके उतने ही और वैसे ही गुण मेरे में, तो उन्होंने वो पर्याय जैसी प्रकट की वैसे मेरे में भी हो जावे, वो मेरे में मेरे से अपने से ही होने वाली है, भगवान कुछ नहीं करेंगे। तो भगवान का दर्शन करके क्या, ये तो प्रेरणा लेते ना वहां से, उन्होंने कर दिखाया हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे में भी इतनी सभी शक्ति है। तो ये कहते आपके गुण मुझे प्राप्त हो, ये उनके गुण वहां से निकल कर मेरे में आने वाले नहीं है, वो मेरे अपने से प्रकट होंगे। उसको कहने की पद्धति मुझे प्राप्त हो, एवं गुणों मने मड़े, त्यां गुण शब्द है। पेज नंबर 23 पर आए, केवल ज्ञान आदि पर्याय थाय छे, अहीं कहे छे पर्याय परद्रव्य ने परगुण थी उत्पन्न थती नथी। मेरे में जो पर्याय होने वाली भगवान या कोई गुरु मुझे देने वाले नहीं है, वो मेरे अपने से ही वो प्रकट होगी, मेरा ही द्रव्य गुण उस रूप परिणमित होने वाला है, अन्य कोई द्रव्य भले भगवान भी क्यों ना हो, वो मेरी पर्याय कुछ कर देने वाले नहीं है। तो कहते परद्रव्य ने परगुण थी उत्पन्न थती नथी। सेकंड लाइन 23 पेज, तने जे ज्ञान आनंद धर्म ने पर्याय उत्पन्न थाय, ये वितरागता जो है ते तारा द्रव्य ने गुण थी उत्पन्न थाय छे। तारा ने जिसकी जो हो रही है वो तो यह उपदेश दे रहे नहीं, इसे तारा द्रव्य ने गुण थी धर्म की पर्याय कहो, ज्ञान आनंद की पर्याय, प्रत्येक गुण की पर्याय तारा द्रव्य ने गुण थी उत्पन्न थाय छे। एम कहीने तो एम कीधु के पर्याय में भले राग होय, विकारी पर्याय होय, ते समय पण जे सम्यक धर्मनी पर्याय छे ए पर्याय द्रव्य गुण थी रचायेली छे, विकार थी नहीं। विकार को भी पर में डाल दिया, उसके कारण वो धर्म की पर्याय नहीं हुई है। दूसरे भाषा में राग करते करते वितरागता की पर्याय नहीं हुई है, उसके कारण नहीं हुई है, क्योंकि स्वभाव में तो वो है ही नहीं विकार, वो एक क्षणपूर्ता है। गुण कैसे अनादि अनंत कायम रहने वाले, उस वो परिणाम पर वो पर्याय हुई है, स्वभाव पर्याय है, वो गुणों में से निकली है, गुण उस रूप परिणाम हुआ है, परंतु विकार है, विकार रूप परिणमित होने वाला गुण नहीं है, वो गुण का कार्य नहीं है, फिर भी एक समय पूर्ति वो पर्याय में उत्पन्न हो गई है। तो कहते विकार थी नहीं, आयु ने माई शू कहू फरी ने, पर्याय में विकार पण छे अने निर्विकारी पर्याय पण छे। ये साधक लिया ना, समय दृष्टि लिया, एक समय बनने छे, क्योंकि अभी समय दर्शन तो हुआ है, पूर्ण वितरागता तो 12वें में जाकर हो जाएगी। तो कहते छता ए निर्विकारी विकार रहित जो धर्म की पर्याय है, समय दर्शन ज्ञान नी पर्याय छे, ए द्रव्य गुण थी रचायेली छे, राग थी रचायेली नथी। राग विद्यमान है पर राग से ये पर्याय नहीं हुई, ते समय राग नो विकल्प हो, क्योंकि अभी तो साधक दशा तो विकल्प भी होगा, वहां पर बुद्धिपूर्वक होगा या शुद्धोपयोग में, तो अबुद्धिपूर्वक में भी चलेगा, विकल्प है वहां पर। तो कहते राग नो विकल्प हो तेने जाने, क्योंकि ज्ञान का कार्य तो जानने का है, वो पर्याय को भी जानेगा, राग को भी जानेगा, परों को भी जानेगा, सब सब कुछ जानेगा। एक सम्यक दर्शन का विषय है स्व, बस उतना ही, ज्ञान का विषय सब कुछ, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय में डिफरेंस है। ये समझ में आती बात नहीं समझे? सम्यक दर्शन किसको विषय करता है, उसको क्या देखता है, बस मैं देखता है। अभी मिथ्या दर्शन है ना, दृष्टि जो कहेंगे, मिथ्या दर्शन यानी क्या है, मिथ्यात्व है, उसकी श्रद्धा की विपरीतता है, वो भी किसको देखता है, स्व को। क्या देखता है स्व, कहाँ देखा, शरीर मैं हूँ, राग मैं हूँ, उसने उसमें मैंपना स्थापित किया, जिसको हम बहिरात्मा कहेंगे, बाह्य चीज में आत्मपना स्थापन कर दिया। अंतरात्मा यानी समय दृष्टि, जो शुद्धात्मा जिसको कहेंगे, ज्ञायक भाव कहेंगे, पारिणामिक भाव कहेंगे, स्वभाव भाव कहेंगे, उसमें उसने मैंपना स्थापित कर दिया, उसको केवल मैं दिखता और कुछ नहीं दिखता। पहले पर्याय जितना मैं मान लिया था उसने पर्याय में मैं पना स्थापित किया था, अब समय दर्शन हुआ है ना, क्या उसका मैं कहा नक्की कर दिया उसने स्वभाव में। जब तक हम मैं मनुष्य हूं करके सोचते हैं तो फिर ये करना कि नहीं करना वो करना, ये प्रश्न उठते हैं। एक बार वो स्वभाव में मैं नक्की कर दो तो उस मैं के तो वो मैं हूं, तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, फिर वो सोचना मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए, तो ये उलझन सब समाप्त हो जाएगी। परंतु ज्ञान क्या क्या, तो ज्ञान तो स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, अपने स्वभाव को भी जानेगा, पर्याय को भी जानेगा, राग को भी जानेगा, सब कुछ हो, ज्ञान का विषय सब कुछ है। समय दर्शन और समय ज्ञान के विषय में डिफरेंस है ये। तो कहीं पर दृष्टि की अपेक्षा कथन आता है तो वहां स्वभाव भाव को लेना, मुझ में राग है ही नहीं, वो कौन सा मैं, दर्शन वाला मैं, दृष्टि का विषय वाला मैं। अब ज्ञान कहेगा पर्याय में मेरे है राग, स्वभाव में कुछ नहीं है, उन पर्याय में राग है और वो मेरा अपराध है। अगर पर्याय में भी राग नहीं होता तो अनंत आनंद आना चाहिए था, अभी दुखी क्यों है फिर, पर्याय में दुख है न? देखो क्या कहते, ते समय राग नो विकल्प हो तेने जाने, ज्ञान जानने का कार्य करेगा उसको भी, पण तेनाथी समय दर्शन ने पर्याय रचाती नथी। पर्याय में राग भाव है, कौन से, भगवान की भक्ति का राग है और अन्य अन्य जो है, परंतु उसके कारण समय दर्शन नहीं हुआ है। ये समझ में आई बात, मिला क्या ताराबेन, पेज नंबर मिला क्या उनको, पेज नंबर 23 है, 24 है आपके, देखो श्रोता पूछते है ना, कर्तापना ना झेर अने अभिमान उतारी दे एवू छे, क्योंकि मैं पर का करता हूँ ये मान्यता इतनी है ना, मैंने इतना कार्य किया है, मैंने समाज को सुधार दिया, मैंने मंदिर बांधा है, मैंने पुस्तकें लिखी, हमने पुस्तकें बनाई, ये सब हमने किया, तो कहते कर्तापना का अभिमान का झेर है वो। पूज्य गुरुदेव श्री कहते आ अज्ञानी तो जहाँ हो त्या मैं करू ने, आ काम मैं कराया ने, फलाना कराया, दुकाने बैठो एटले व्यवस्थित काम मैं करू, भाई शू आमा करू, मैंने पैसे कमाया, मैंने पैसा ठीक ठाक लगाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये क्या, ये सबका कर्ता मैं होकर बैठा है। एक एक परमाणु अने एक एक आत्मा छे, एवा अनंत परमाणु अने अनंत आत्मा छे, तेमाथी एक एक आत्मा ने द्रव्य केम कहिए, के तेना गुणों अने तेनी पर्यायोनु ते दल छे, माटे तेने द्रव्य कहिए। एक एक आत्मा है वो एक एक द्रव्य है, जुदा जुदा द्रव्य है, और सारे आत्मा मिलकर एक द्रव्य हो जावे का नहीं, नहीं होगा। वो अन्यमति मानते हैं ना, वो अनंत में विलीन हो जावे, यानी अपना अस्तित्व मिट जावे और वहाँ सब मिलकर एक हो जावे। यहाँ अरे एक जॉइंट फैमिली भी नहीं सुहाती है, और वहां जाके सब एक हो जावे, कैसे किसी को सुहाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। अन्यमति मानते हैं मोक्ष मिला ने क्या, अनंत में विलीन हो गया। अरे अनंत सिद्ध, ये भी सिद्ध हो गया, पर हर एक का अस्तित्व जुदा जुदा रहता है। यहाँ कहेंगे आत्मा मैं स्वयं एक द्रव्य हूं, क्यों, क्योंकि मेरे गुण और पर्याय का वो दल है, पिंड है, इसलिए मैं एक द्रव्य हूं। माटे तेने द्रव्य कहिए, अने गुण केम कहिए, के ते अनंत शक्तिओ छे, जो मैं द्रव्य हूं मुझ में अनंत शक्तियां है, तेनो आधार एक द्रव्य छे, इसलिए उसको गुण कहेंगे, एने गुण कहिए। पर्याय कोने कहिए, के ऊपर जे द्रव्य ने गुण कीधा तेनाती जे अवस्था उत्पन्न थाय तेने पर्याय कहिए। यहां तक समझ में आए ना, ये बारंबार द्रव्य गुण पर्याय को ही नक्की करना है, ये कर नक्की करते हैं तो कितने हमारे सवाल सब सुलझ जाते। अहियां तो समय दर्शन ने धर्मनी पर्याय केम थाय, हा हा, समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र एक ही समय में तीनों हो जाते, तभी से धर्म की शुरुआत हो जाती है। ए द्रव्य जे वस्तु भगवान आत्मा छे, अने गुण जे द्रव्य ना आधारे रहेला छे, ए द्रव्य थी समकितनी पर्याय थाय, ए राग थी न थाय, क्या कहा, सम्यक्त की पर्याय मेरे से होगी, मैं द्रव्य हूँ, मेरे से होगे, राग से नहीं होने वाली है। बीजा थी न थाए, वाणी थी न थाए, देव गुरु थी न थाए, भगवान ने मंदिर ना दर्शन करवा थी पन ए पर्याय न थाए। हमारे सभी आचार्यों ने यही कहा ना कि धर्म किसी मंदिर में नहीं होगा, कोई पर्वत चढ़ने से नहीं होगा, वो तो केश लूंचने से नहीं होगा कहते हैं, मुनि अवस्था लेने से नहीं होगा, ये बाह्य किसी क्रिया से या अन्य किसी से भी ये धर्म की शुरुआत या अवस्था नहीं होगी, ये मेरे द्रव्य का कार्य मेरे से होगा, अन्य किसी से नहीं। आप कहेंगे तो हम सब बंद कर देंगे मंदिर जाना वगैरह, ये शुभ भाव आते हैं, परंतु वो राग है, बंधन का कारण है, उससे बंद होगा, उससे मुक्ति नहीं होगी, धर्म उससे नहीं होगा। जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होती, ज्ञानी को भी मुनियों को भी ये राग आता है, कौन से वहाँ तो यात्रा का भी विकल्प होगा, उनके शास्त्र लिखने का, बताने का, उपदेश करने का, नित्य देव दर्शन वगैरह वो सारे उनके वो तो हो गए ना उनके, परंतु वहाँ वो धर्म नहीं है, वो साथ में है राग और उससे हो रहा है बंद, और वो करने योग्य मानकर वो नहीं हो रहा है, उनकी अभी अवस्था है कि उनके योग्य ऐसे भाव ऐसी क्रियाएं होगी जरूर। अब कुछ कहना,
जिस परमात्मा से कहो या सर्वज्ञ से कहो या तीर्थंकरों से, ये बात हम तक पहुंची है, सच्ची बात पहुंची है, इस बात का जब उसको ज्ञान होता है तो उनके प्रति और अधिक राग उत्पन्न होता है।
सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को ही होगी, क्योंकि अज्ञानी ने कुछ पाए नहीं ना। हाँ, वो हमारे पूछते ना बच्चे कोई, ये कुछ नहीं देते तो क्यों भगवान का उनको क्यों पगे लगना, उनके नमस्कार क्यों करें, वो तो कुछ नहीं देते, बाकी लोगों के भगवान देखो कुछ दिन कुछ देते हैं, ऐसा पूछने वाले हैं अभी सब जगह
नहीं नहीं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि तुमको ये सब करके तुम उपदे नहीं हो, बार बार वही, बार बार वही, ऐसा उनके बच्चे नहीं सुनते होंगे, तो एक वही कह रहे कि बच्चे लोग नहीं सुनते तो हम क्या करें,
समझाए। अरे दूसरा कुछ कर ही नहीं सब दूसरे का, हाँ।
पहले अपना कर लो, मैं तो कहूँगा समझाए, और वो नहीं समझे तो हम कशायित नहीं हो गए, लेकिन समझाना नहीं, ऐसा नहीं करना, यहाँ वो कायदा नहीं लागू पड़ता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है,
नहीं समझाने का विकल्प आता है, पर हमारे विकल्प आया इसलिए वो उपदेश दिया ऐसा भी नहीं है, और उपदेश सुना इसलिए उनको अच्छा लगता है वही करते हैं, हमें लगता है हमने बताया इसलिए उन्होंने सुना, लोगों क्या लगता है हमारे घर में हमारी चलते, हम जैसा बताते वो सब सुनते, नहीं वो सुनते इसलिए उनके उनको योग्य लगता है, वो अपने से कर रहे हैं और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं है।
इसका और एक उदाहरण देता हूँ, हमने पूछा किसी से क्यों साहब क्यों नहीं आते प्रवचन में, अरे वो प्रवचन के टाइम में हमारे यहाँ नौकर आते हैं और हम नहीं रहेंगे तो काम ऐसा है, उल्टा पुल्टा करके इधर उधर फटाफट फटाफट करके जाते हैं, हम सामने रहेंगे तो बिल्कुल व्यवस्थित काम होता है। तो उसका उत्तर अभी आपने दिया था, वो जो कुछ नौकर का जो कुछ परिणमन विचारों का या एक्टिंग का जो भी मतलब कार्य करते हैं, वो जिस दिन जैसा होगा वैसा ही होगा, तुम खड़े हो इसलिए वो ठीक ठाक कर रहा है ऐसा मत समझना, निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये बात अभी तक गले उतरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो व्यवहार में तो हम करूं पड़े ने, ऐसा बोलता है, अरे व्यवहार से कुछ नहीं होता है, जिस समय उस नौकर के ठीक ठाक काम करने का विचार होगा ठीक करेगा, भागम दौड़ करना है तो भागम दौड़ करेगा, ऐसा ही है। ये बात पचने में बहुत कठिन है, अरविंद भाई के माथे पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है
देखो यहाँ क्या कहते हैं,
मुनिराज को भी वो आवश्यक कहा है,
आवश्यक में उनके जो उनकी जो भूमिका है, भूमिका में उनके ऐसे देखो चरणान योग में आवश्यक कहने की पद्धति अलग है, चरणान योग का कथन करना चाहिए वाली होती है, पर करना चाहिए वाली बात है, श्रावक को भी उसके अपने उच्च षटकर्मानी दिने दिने करना चाहिए, वो चाहिए वाली बात चरणानियों की भाषा है। तो जो उस भूमिका में है उनको ऐसे भाव आते हैं, मुनि जो भावलिंगी संत है उनके भी वो उनकी दिनचर्या ऐसी है, और जिसने ऊपर से व्रत अंगीकार के वो भी वैसे के वैसे बिहेव कर रहा है, उनके तो आचरण वैसा ही दिख रहा है दोनों का, परंतु इनके तो अंतरंग में जो इतनी आत्मस्थिरता है, चारित्र जो सच्चा चारित्र प्रकट हुआ है, और उन्होंने केवल बाह्य में क्रियाएं अंगीकार की है, ख्याल में आती है।
यानी जब मैं व्यवसाय करता था फोटोग्राफी, तब ऐसा ही मानता था कि मैं गल्ले पे खड़ा रहूं काउंटर पे तो बराबर गिरा पटता है, लेकिन गुरुदेव बताए कि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव का कुछ, जब से दिमाग ऐसा फिर गया गुड बाय कर दिया।
हाँ? संडे के दिन इतने लोग आते हैं, आप बैठे इसलिए आते हैं कि नहीं? तो दूसरे अभी शाम के दूसरे प्रवचन में भी बैठना चाहिए, वो तो सब उठ के चले जाते हैं, विरले ही बैठते
बैठने को कुर्सी नहीं मिली, पहले बोलता हूँ इधर कुर्सी कोट को बैठने को।
क्या कहते हैं देखो,
ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
हाँ, बड़ा पैराग्राफ।
सम्यक दर्शन
नी पर्याय धर्म नी पहली शुरुआत नी पर्याय क्यांती थाय के द्रव्य गुण जे किदा तेनाती पर्याय थाय। हाँ, जब बात करी छे ने पेलो व्यवहार रत्नत्रय नो राग छे एनाथी न थाय एम कीधु। भाई अज्ञानी तो एम कहे के व्यवहार करिए ए करता करता धर्म थई जशे, ये अज्ञानी की मान्यता है। पहले तो व्यवहार तो सीखो, व्यवहार करते करते फिर वो प्रकट होगा। शुभ मंद कषाय करता थाय अहीं ना पाड़े छे, कहे छे के संकित ने पर्याय छे ए द्रव्य ने गुण थी थाय। श्रोता कहते एना प्रयत्न थी थाय, गुरुदेव श्री कहते राग ना प्रयत्न थी बिल्कुल नहीं, प्रयत्न करियो ज नथी, ए प्रयत्न करियो ए तो राग थयो। क्या प्रयत्न किया? ध्यान के लिए बैठ गया, ये प्रयत्न, वो तो राग हुआ। मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, ये विकल्प हुआ, विकल्प है वो राग है। राग से नहीं होता है, वो राग छूटकर होगा। क्या कहते हैं? ये तो राग थयो, राग पण एना द्रव्य गुणना कारण थी उत्पन्न थयेलो छे, विकृत अवस्था तेने आगळ विभाव कहेशे। यानी वो भी द्रव्य गुण से हुई है, पहले ये नक्की करेंगे, अभी ये प्रवचन सार है, वहां स्वभाव की अपेक्षा राग को बिल्कुल निषेध करेंगे, परंतु यहाँ तो हमको पर से नहीं होता है, उसी द्रव्य गुण से वो पर्याय हुए, विकारी पर्याय है वो, अपने द्रव्य गुण से हुए, भले समय पूर्ति है परंतु उसको पर द्रव्य से नहीं हुई। हाँ बस, पर मुझ में ने मैं जो स्वभाव भाव हूँ मुझ में वो नहीं है अभी तो। देखो ये जो है विवेक नहीं, वो तो पात्रता होगी, क्योंकि हम पहले हमको सम्य दर्शन होना है तो पहले देव गुरु और शास्त्र का तो निर्णय करना है, सच्चे देव गुरु शास्त्र उनके भक्ति के विनय के परिणाम होंगे, क्योंकि जो मार्ग हम उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमको भगवान का स्वरूप नक्की करना है तो उनके गुणों के प्रति अहोभाव आए बिना नहीं रहेगा। अरे मैं भी जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य, उन्होंने कैसी पर्याय प्रकट की। लौकिक में किसी ने कुछ विशेष हासिल किए है तो उसको कितना बहुमान आता है, कोई क्रिकेटियर हो, कोई संगीतकार हो, कोई जो अन्य कोई गायक हो, तो उसने अरे इतने अचीवमेंट कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट कार्य है, कौन से? आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था जिन्होंने प्रकट की है। तो हम भी आत्मा है तो हम भी ये अवस्था प्रकट जरूर कर सकते हैं, तो उनके प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहेगा। परंतु ये जो राग भाव है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और राग में एकत्व बुद्धि है, वो मिथ्यात्व है। करना चाहिए वाली वो प्रश्न पूछते ना, जब तक सम्यक तो नहीं होता तो ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी चाहिए वाले ने राग का कर्तापना बुद्धि वाला वो ऐसा प्रश्न पूछता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर भी वो क्या कर रहा है, तो ज्ञान ही कर रहा है, पर उसको लगता है राग रूप में परिणमित हुआ है, वो ज्ञान और राग को जुदा देख नहीं पाता है, दोनों को मिलकर ही वो अपने आप को पहचानता है कि मैंने राग किया, मैंने ये करना चाहिए ना, ये प्रश्न ही उसके ऐसा होता है कि तब तक ये करना चाहिए ना, अरे हो ही रहे शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ, किसको एकेंद्रियों के भी संकलेश विशुद्ध यानी कषायों की मंदता और कषायों की तीव्रता अल्टरनेटली चलती रहती है कायम। अभी हमारा सुबह जो महाबंध का प्रकरण है ना, जिसको पुण्य भाव पाप भाव कहो, अभी निगोद में भी हर अंतर मुहूर्त में मनुष्य गति और तिर्यंच गति बन रही है, भले निगोद कितने काल तक रहेगा, इतर निगोद ढाई पुद्गल परावर्तन काल तक, और एक केंद्रीय में कोई असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहता है, हर अल्टरनेट अंतर्मूर्त में मनुष्य गति बांध रहा है। शुभ भाव होते तो मनुष्य गति बांधेगा, अशुभ भाव होते तो तीरंज गति बांधेगा, कभी एक इंद्रिय जाती, द्विंद्रिय जाती, तीनद्रिय जाती, चतुरिंद्रिय जाती, तो निगोद में इतने काल तक कैसे घूमा मनुष्य गति बांध रहा है, तो बोलो प्रश्न नहीं आपको आया? हर अंतर्मूर्त में मनुष्य गति, अरे मनुष्य आयु नहीं बांधी कभी, गति तो हर अंतर्मूर्त बांध रहा है, कभी तीर्यंच गति, आयु एक आयु कभी कभी बनती है, गति हर समय बन रही है, तो कभी अंतर्मूर्त, हाँ अंतर्मूर्त तक एक गति बांधी, फिर दूसरे अंतर्मूर्त में दूसरी गति बांधी, फायदा थोड़ा ही है, ये सारा नुकसान ही नुकसान है, यानी सारे कर्म बन ही रहे हैं, अरे कुछ भी कोई भी बांधने में फायदा नहीं है, ये समझा नहीं ना वो, जो बांध नहीं, नहीं गति में जो आयु बनती है ना उस पर्याय में जाएगा वो, जिस गति संबंधी आयु, आयु के नाम अलग है ना, मनुष्य आयु है, तिर्यंच आयु है, देवायु है, नारक आयु है, जो आयु बंधी है, आयु जब बनती है मनुष्य आयु, तब मनुष्य गति बांध रहा है उस अंतर्मूर्त में, पर आयु बनकर रुक जाती है मिथ्या दृष्टि ने किया, एक हम एक इंद्रिय की बात करेंगे, ना वो अभी हम एक इंद्रिय की बात करेंगे, किसी एक इंद्रिय ने मनुष्य आयु बांधी, अभी उसकी आयु शेष है, क्योंकि मनुष्य आयु पहले बांधी, अभी उसको कुछ काल बाकी एक इंद्रिय पने का, तो उसमें वो फिर तिर्यंच गति बांधेगा, कभी मनुष्य गति बांधेगा, क्योंकि उसके लिए दो ही गति बांधी ना, एक इंद्रिय जो नरक गति देवगति बांधता नहीं है उसके लिए यही है, कभी एक इंद्रिय जाति बांधेगा, कभी द्विंद्रिय जाति बांधेगा, कभी तीनद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, कभी तिर्यंच गति, कभी मनुष्य गति, मरण तक ऐसा ही चलेगा। हाँ मरने के पहले वो शुभ परिणाम में मरकर वो मनुष्य गति बांधते हुए मनुष्य में आ जाएगा, यानी एक इंद्रियों में भी ऐसे परिणाम पलटते होते हैं, जिसको हम कहेंगे उसमें भी शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, क्योंकि जो निगोद में जाता है क्यों जाता है, संकलेश करके या अशुभ परिणाम करके, पाप करके, अब वो निगोद है वहां से मनुष्य में आएगा, कोई बादर निगोद मनुष्य में आकर उसी भाव में केवल ज्ञान भी हो सकता है उसको, तो उसने मनुष्य गति बांधी, मनुष्य गत्यानुपुरी अवदारिक अवदारिक अंगोपा वज्र शुभ नारा सहनन बांध के आया है, क्योंकि उत्कृष्ट सहनन होगा ना तभी तो वो तो मोक्ष जा सकता है, यानी ये सभी पुण्य प्रकृतियां उसने निगोद में बांधी कि नहीं बांधी, और वो बांधकर यहाँ जन्म लिया उसने, यानी यहाँ हम मनुष्य में आए हैं, कौन कौन से गति में से आया क्या पता किसको, मनुष्य मनुष्यायु बांधी है और यहाँ उसने जन्म लिया है, कहीं से भी आ सकता है ना मनुष्य, सम्यक तो होने के पश्चात देवगति ही बांधेगा फिर से। अभी हम श्रेणिक राजा की बात करते हैं, आपको पहले बोलना,
हाँ क्योंकि मैं आप आगे आगे जा रही है और मैं पिछली बात कुछ बताना,
बोलो बोलो, हम श्रेणिक राजा की बात बाद में करेंगे।
मैं दक्षाबेन से उनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आपको आठ कर्मों के नाम मालूम है? बोलो बोलो, ऐसे आठ कर्म है, उसमें से हर समय कौन कौन से कर्म बनते हैं और कौन सात बनते हैं, आयु कभी कभी बनती है, तो अभी आप जो बता रहे बार बार
नाम कर्म बंध रहे ना,
हर अंतर मुहूर्त में गति बांध रहे अलग अलग से, तो ये गति जो है वो नाम कर्म का भेद है, ख्याल में? इसलिए वो जीव हमेशा कोई ना कोई गति बांधेगा, लेकिन आयु कब बांधेगा, पर्टिकुलर उसके जो 8 अवसर आते हैं उसी टाइम वो बांधेगा। यानी वो आयु कर्म कभी कभी बांधा जाता है, 7 कर्म निरंतर बनते हैं और 8 कर्मों का उदय निरंतर चालू है। आपका आयु कर्म का उदय चालू है कि नहीं, ख्याल में? अभी कभी कभी क्या होता है कि आपने कौन सी गति बांधी है, तो नरक गति बांधी है, तो मान लो 10 साल के लिए बांधी, मानने के लिए कह रहा हूं, तो 10 साल के बाद का तो उसका उदय आएगा। उस 10 साल के समय पर आप मनुष्य पर्याय में हो, तो वहां उदय कौन किसका आएगा, नरक गति का। तो क्या होगा, तो वो जब उदय आता है तो नरक गति मनुष्य गति में ट्रांसफर होकर संक्रमित होकर उदय में आती है। यानी ये जिसको हम कहेंगे कर्णानियोग के थियरीज सिद्धांत अगर हमें ख्याल में आते हैं तो ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। और ये हमेशा आपकी नहीं, अनेकों की यही गलती होती है कि गति और आयु इसमें भेलसेल हो जाती है। तो ये पहले क्लेरिफाई होना चाहिए कि आयु कभी कभी बनती है और गति जो है वो नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म के कितने भेद है मालूम है आपको? हाँ, नाम कर्म,
नाम
के
कर्म।
अच्छा, ज्ञानावरण के कोई बात नहीं,
नहीं आपका वो
आपका विषय नहीं है।
ज्ञानावरण के 5 हो जाते हैं। हाँ, दर्शनावरण 9 प्रकार का है। हाँ, देखो नाम कर्म क्या होता है, नाम कर्म में सभी एट ए टाइम तो बनती नहीं है,
उसमें एक मिनट 93 भेद होते हैं। और यार आप तो अंदर अंदर कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करें? वो जब नहीं समझेंगे तो ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं और उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिलता है तो लगता है कि ये कुछ भी बोलते हैं। हम नहीं, आचार्य, क्योंकि हम तो आचार्यों की बात पढ़कर ही आपको बता रहे हैं। अब आप बताना नाम कर्म के क्या
देखो,
बात
बता नाम रहे? कर्म में सभी नाम कर्म एट ए टाइम कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उसमें 4 प्रकार के गति नाम कर्म है, तो एट ए टाइम 4 में से कोई एक गति बंधेगी, पर गति बंधेगी तो जरूर जरूर, नहीं बंधेगी वो बात ही नहीं है। 4 गति में से कोई बंधेगी बंधेगी, जो गति बांध रहे तो मनुष्य गति या तिरंज गति बांध रहा है तो वो औदारिक शरीर अंगों पंखा बंद करेगा, तेजस कर्मा तो हर समय बंधेगी, फिर वो पर्याप्त संबंधी तो अगुरु लघु उपगत, तो वो बहुत सारी प्रकृति है, तो उसके अनुसार जो गति बांधता है ना, जो जिस गति का बंध हो रहा है उसके साथ उसका पैकेज है, मेरी भाषा में वो नाम कर्म का उतने का पैक वो बांधेगा, यानी नरक गति वाली वो नरक गति प्लस और अन्य मिलकर 28 प्रकृतियां वहां बंधेगी, देवगति वाला भी ऐसा ही, वो प्रशस्त संबंधी प्रकृतियां है। अभी वो अपना विषय नहीं है कौन सी है क्या है, वो सुबह तो हमारे यही फटाफट चलता है सारा। तो अभी मैंने श्रेणी के राजा की बात उठाई थी, आपने प्रश्न था ना कि समय दर्शन होने के बाद क्या बांधता है, मिथ्या हाँ देवगति बांधे, मिथ्या दृष्टि जी, अभी हम मनुष्य की बात करेंगे, एकेंद्री को छोड़ दो, मनुष्य है मिथ्या दृष्टि है, तो हर अंतर्मूर्त में अन्य अन्य गति बांध रहा है नियम से, बड़ा छोटा अंतर्मूर्त का गैप होगा, पर देवगति बांधेगा कभी नरक गति बांधेगा, कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंश गति, तिर्यंश में भी एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय जाति का भी अल्टरनेटली बंध चलेगा, यानी कभी उसमें अंतर बहुत बड़ा या छोटे अंतर्मूर्त का गैप बिना बहुत बड़ा अंतर कभी नहीं पड़ेगा कि 10 साल के लिए हमने नरगति बांधी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि है ना, तो अंतर्मूर्त के अंदर ही अंदर फिर दोबारा नरगति बांधेगी बांधेगी, यानी वो अल्टरनेटली सब चलता है। आप कहेंगे हम जैनी है, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सुबह से हमारे सारे ये शुभ प्रवृत्तियां हो रही है, फिर भी भले वो मंद बंधेगी जो जैसी बंधेगी, परंतु बंधेगी जरूर। समय दर्शन होने के बाद क्या होता है, वो तो देवगति का ही बंध करेगा निरंतर। अभी मैं श्रेणिक की बात इसलिए ली थी कि श्रेणिक राजा पहले मिथ्या दृष्टि था, उसने भी चारों गतियां बांधी होगी, परंतु जब आयु बांधी तब नरकायु और नरगति दोनों उस समय बंधी उसमें। अब उसके तो नेक्स्ट आयु तो नक्की हो गई, नरक में जाना ये नक्की हो गया। उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन जिस समय से प्राप्त हुआ तभी से वो देवगति बांध रहा है। मनुष्य देवगति बांधते, मरण तक उसने देवगति बांधी, मरकर नरक में गए। क्षयिक समय तो था तो छूटने का सवाल नहीं था, तो नरक में जाते ही पहले समय से मनुष्य गति बांध रहे, क्योंकि नारकी समय दृष्टि मनुष्य गति को ही बांधेगा, उसके दो ही गतियां बनती है, नारकी ना नरक गति बांधता है, नारकी ना देवगति बांधता है। तो वो तो हर समय मनुष्य गति बांध रहे, अभी वहां की 84,000 वर्ष की आयु है तो समय दृष्टि है नारकी, लगातार मनुष्य गति बांध रहे। अब वहां से ये आएंगे यहाँ पर मनुष्य में, हाँ वो तो तीर्थंकर है, होने वाले हैं ना, वो गर्भ कल्याण को सब होगा। तो गर्भ में आते ही देवगति बांधना शुरू किया। देवगति कब तक बंधेगी? आठवें गुणस्थान तक, आठवें, हाँ छठे भाग तक। और फिर वो बांधी उसका क्या होगा? अब वो आयु बांधे वाले नहीं है, क्योंकि उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। ख्याल में अभी ये जो जो कुछ गतियां बांधते हैं ना वो पड़ी है सत्ता में। जिस गति का उदय होता है, उन्होंने कहा था जिस गति का उदय, हम अभी मनुष्य गति में आए हैं, हमारे मनुष्य गति का उदय चल रहा है, पर हमें नहीं देखा था चारों गति के परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं। तो उनकी स्थिति पूरी हुई तो क्या होगा उनका? उनको तो उदय तो आना ही है, वो एक समय के लिए टर्न होकर उदय में आएंगे। जिस गति का उदय चलता है उस रूप वो ट्रांसफॉर्म होकर, उसको एक समय पूर्ता संक्रमण, उसको थ्यूक संक्रमण कहते हैं। एक समय का केवल उदय में आते आते वो अपने सजातीय अन्य रूप से होकर उदय में आती है। अरे अभी हम मनुष्य गति वाले जीव है, सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उसके सत्ता में सभी गतियों के परमाणु पड़े हैं। अभी हम पंचेंद्रिय जीव है, हमारे पंचेंद्रिय का उदय चल रहा है, और सत्ता में बंधे हुए सारे एकेंद्रिय से द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुर्द्रिय सभी पड़े हैं। तभी उदय में क्या आ रहा है? मनुष्य गति जो है, पंचेंद्रिय जाति का उदय हो ही रहा है। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति के जो सत्ता में निषेक पड़े हैं, उनका उदय के समय आते ही वो पंचेंद्रिय जाति रूप से होकर उदय में आ रहे।
उसको थिबुक संक्रमण कहें,
एक समय के लिए थिबुक संक्रमण कहें।
हाँ, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ।
हाँ।
भूबालन जी कह रहे DEPUK, टीपुक, वो डीपुक नहीं है,
थिबुक, थिबुक, TH, थिबुक,
THIBUK।
एक्चुअली प्राकृत थिबुक का कहते हैं, थिबुक
प्राकृत में
THIWU और CK, थिबुक डबल के कहो या CK कहो, थिबुक का संक्रमण, उसको
WU वाटर इरिगेशन कहते हैं ना,
थिबक संचन,
वाटर इरिगेशन, पानी ऐसा स्प्रिंकलिंग होता है,
ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है ना ऐसे,
वैसे ये थिबुक, THIBUK
करना। हाँ, प्राकृत में थिबुक कहते हैं, संस्कृत में थिबुक, थी पहला, थी बू क, बुक वाला बुक, थिबुक, थिबुक संक्रमण। वो संक्रमण सत्ता में नहीं होता है, वो नहीं, मत उदय पूर्ता एक समय के लिए अन्य रूप होकर उदय में आते हैं। ये सारा कर्मों की थियोरी ऐसे है ना, लोगों को लगता है हमने इतना पाप किया, इतना पाप किया, अभी क्या होगा? अरे जिस समय तू समय दर्शन प्राप्त करेगा, भले वो पाप कर्म सत्ता में क्यों ना पड़े हो, उदय में आते आते वो टर्न होकर, अभी एकेंद्रिय जाति बांधी है, नरक गति बांधी है, संबंध निगोद संबंधी साधारण नाम कर्म बांधा है, वो क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य में अभी संबंधात की बात यहाँ नहीं है, केवली के ये प्रकृतियां रही नहीं कोई, वो तो बहुत सारी प्रकृतियां कहाँ पर क्षय होता है उसके नियम है। नवे गुणस्थान में बहुत सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, ये सब नरक गति संबंधी, तिर्यंज गति संबंधी, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी उसका पूरा अलग है साइंस। हाँ, यानी तभी तो उसको क्षय कहते हैं, ये तिर्यंज गति, नरक गति वगैरह 13 प्रकृतियां वहां क्षय हो जाती है।
अभी आपको उसका सारा तो कर्मकांड का दूसरे क्लास में बैठना है शाम को या सुबह आना है, आइदर वे, चॉइस इज योर्स।
नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग विषय, क्योंकि होता क्या है, हमने बांधे इतने ऐसे चले जाएंगे क्या? उसमें कोई साइंस तो होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजनिंग तो होना चाहिए।
लोग इनका कहते होता क्या, फायदा क्या, फायदा हाँ। क्या, जैसा बहन ने अभी बताया, इतना बांधा तो फायदा क्या?
खाली ज्ञान नहीं, कितनी
निराकुलता। फायदे के लिए बांधता है, नुकसान कर रहा है। क्या कर्म बांधना ये नुकसान है?
गया की तो वही तो उसका तो कहते हैं, वो किस रूप से उदय में आएगा, किस रूप से अंदर पड़े पड़े उसमें कितने चेंजेस हो जाते हैं। और क्यों, जीव कुछ नहीं करता, जीव बस अपना धर्म का इन्हें उसके तत्व विचार करता है। केवल अभी सम्यक दर्शन होने के पूर्व मात्र तत्व विचार से ही कितने कर्म बंधना रुक जाते हैं, वो हमने देखा है पंचलब्धि पुस्तक में। प्रायः लब्धिया ने भी तत्व का ही विचार कर रहा है, अभी अभव्य भी उतना कर सकता है, तो उतने में तो 34 बंधा अपसरण है, तो कितने 40 जितनी प्रकृतियां, तो
सम्यक्त्व भी नहीं हुआ है,
नहीं हुआ तो हाँ अंतर्मूर्त के लिए तत्व विचार छूट जाएंगे तो फिर नरगति भी बांधेगा। हम कहते हैं प्रवचन गए अच्छा लगता है, प्रवचन में बाहर आते धड़ाधड़ चालू हो जाती है अपने, कोई धंधे में लगता है, कोई घर के काम में लगता है, तो कितने शुरू होते हैं, फिर कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। अंतर्मूर्त तक और बंधना रुक गया था, हाँ चालू हो जाते हैं, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ऐसा सारे काम हमने रोक के रखे है ना, ऐसा होता है। पहले भी हम भी जाते थे प्रवचन में, दिन में 3-3 बार वगैरह वगैरह, अब घर का काम निपटाना और वहाँ पूरे अटेंडेंस करते थे, उन तो आते ही फिर शुरुआत होती थी
धमाल। जैसे पानी का जब धरण बांधते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, डैम
बांध के,
हाँ, वो डैम बांधते हैं तो पानी रुकता है, जास्ती पानी होएगा तो क्या होता है, सब बाहर निकल जाता है। ऐसा अपना यहाँ तो रुका हुआ है, सारी जो आगे की लिस्ट है काम की
हम मेरी भाषा में उसे उपशमित कर दी क्या हमने एक घंटे के लिए, बाद में सारी उदीरना चालू हो जाती है होता है ना ऐसा, यहाँ बैठे हमें कोई विचार नहीं अन्य कर्म, और ये होते ही वो अरे ये करना है, वो करना है, वो करना है, धमाधम चालू हो जाती है।
अगर आपको मुख मार्ग समझना है तो बंद उदय और सत्ता की विच्युति मुख पाठ करो, आपका ही वचन करो करो,
क्योंकि वो पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाता है कहाँ और वो किस पद्धति से होता है। देखो विच्युति का अर्थ है उस गुण स्थान में वो बनता है, आगे के गुण स्थानों में नहीं बनता, वहां तक उसका उदय है, उसके आगे आगे वाले गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का उदय रुकता है वो सारे नियम है। तो रुकता है ना, वो होता क्या है उसका आपका जो प्रश्न है, तो वहां जो उदय रूप है उस रूप होकर वो एक एक करके निकल चलते। अभी पूरा सत्ता में से जब नष्ट होना है तो वो ऊपर के गुणस्थानों में होता है। यानी ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है और पूरा ऐसा क्लैरिटी लगता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, बस ये इस तरह से वो बंध रहे, बंधे तो क्या है, तुम अपना तत्व का विचार करो, अपना लक्ष्य करो, बस ये तो दौड़ा दौड़ी चालू हो जाएगी उसके अंदर, भले वो कितने भी सालों के क्यों ना हो, असंख्यात वर्षों के कर्म पड़े हैं सागरों के, क्योंकि मैक्सिमम बंध तो 70 कोड़ा कोड़ी वाला है मिथ्यात्व का।
यानी जीव को कर्म में कुछ नहीं करना है?
अरे कर ही नहीं सकता
हाँ, तो फिर जीव को पढ़ने का, उसका जो होगा सो होगा ना,
उसका होगा तो होगा, परंतु यहाँ अज्ञान और भूसा भरा है ना पूरा, ये तो उसने मान लिया कुछ ना कुछ अपनी मति कल्पना से, क्योंकि उसके कारण मुझे रखड़ रहे, कर्म के कारण, कर्म मुझे इधर ले जाएगा, कर्म मुझे उधर ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, कर्म से डरने की बात ही नहीं है, वो तो पुद्गल परमाणु को पुंज, परंतु निमित्त बताया जाता है कि जीव के परिणाम को बताने वाले है वो, जैसे जीव के परिणाम है वैसे वहां अवस्था दिखाई देती है, तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी ओर देख कर, यानी उसका अगर हमको ज्ञान, हम तो कर्म दिखते ही नहीं, पर जो शास्त्र में उसका आता है इसका उदय है, उदय क्या दिख रहा है आपको, तो उदय क्यों कहते हैं, क्योंकि जीव के जो योग्यता है, जीव की जो अवस्था है उसको देखकर हम उदय का अनुमान लगा सकते हैं, बंध का अनुमान लगा सकते हैं, कर्मों की भाषा में बोलते जरूर है, परंतु वो जीव की विशुद्धि या संकलेश बताने वाली चीजें हैं, उसका गुणस्थान बताने वाली वो बातें हैं, है ना, ये तो बिल्कुल साइंस ने अभी इतना सूक्ष्म देखना नहीं उसने आया है, भले वो अनंत परमाणुओं का पिंड है, जीव मर जाता है तो पूरा कार्मान शरीर पूरा तेजस शरीर, इतना ही नहीं एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत परमाणु जिसको हम विश्वसोपचय कहते हैं, ये सारे चार राशियां इकट्ठा और एक जीव, इतना पूरा का पूरा चला जाता है। कितना दिखता है उसको? कुछ नहीं दिखता है, साइंस को भी उसका पता नहीं लगा है। केवल ज्ञानी तो साक्षात देख रहे हैं पूरे, क्योंकि अनंत जीवों का मरण हो रहा है हर समय, अनंत मर रहे हैं और लोकाकाश के एक एंड से दूसरे, वो पूरा ट्रैफिक इधर से उधर चल रहा है जोर शोर से, और कोई कहां मिक्स नहीं होता है, किसी का रास्ता चुकता नहीं है, जैसे कर्म बंद ऐसा चला जाता है। अनंत जीव कारमान का नहीं, हर समय अनंत मर रहे है।
मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ। ऐसा कहते हैं अमेरिका के लोग, उन्होंने कांच का एकदम एयर टाइट, मतलब कहीं अंदर बाहर होने की कहीं सुराख नहीं रखे, और एक मरते हुए जीव को वहां रखा, उसको भी कांच के बॉक्स में रखा। तो जब वो मर गया तो उनको लगा कि जाता है तो कहीं वो कांच बांच क्रैक करके जाता होगा, ऊपर का ये क्रैक करके जाता, कुछ नहीं, जैसे के वैसे रहा, जैसे आपने बताया इतने सारे कर्म भी गए, इतने सारे तेजस शरीर भी गया, ये सारे गए, विश्वसोपचय भी गया, जीव भी गया, लेकिन जैसा था वैसा इंटैक्ट रहा।
अरे कांच क्या बात है, पूरे सात पृथ्वी अनेक पृथ्वियों में से भेद कर चला जाता है।
हा? मुझे ये कहना है कि जब हम बहन आपके लिए जैन तत्व परिचय आप जब पढ़ती है तो उसमें पुद्गल के जो विषय है एक दो, उसमें स्कंद के भेद दिए छह प्रकार के,
स्थूल स्थूल वगैरह ना,
स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तो सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वह भी इस जीव को दिखता नहीं है,
सूक्ष्म भी नहीं दिखता है। सूक्ष्म सूक्ष्म तो बिल्कुल बहुत छोटा हो गया, सूक्ष्म जो है क्या है?
कर्म।
वो कर्म वो कहाँ दिख रहा है? ये कर्म हम इसमें से आगम में से हमको जानकारी है, भगवान ने तो साक्षात देखे हैं और बताए हैं, हम ये आगम में से ग्रंथों में से पढ़ते हैं तो हम इतनी बिल्कुल बेधड़क कह देते कि ऐसे ऐसे कर्म है, ये उसकी ये अवस्था, ये ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, ये तो हमने आगम से सीखा है।
ये बात तत्वार सूत्र में भी लिखी हुई है, इस कंदों के जो भेद उसमें तो अलग टाइप है और इसने जो लिखे वो अलग टाइप से है। मुझे ये कहना है कि जो सूक्ष्म स्कंद जो होते हैं वो अनंत परमाणुओं का बना हुआ स्कंद है, वो भी आंखों से दिखता नहीं, कोई इंद्रियों से जाना नहीं जाता, और वो भी अनंत परमाणुओं का स्कंद है। और जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो तो दो परमाणु का स्कंद है, वो कहां से दिखे? आपने कहा साइंटिस्ट को या साइंस को भी नहीं मालूम, अरे साइंस बहन वो तो क्षोभम ज्ञानी है, हमारे सर्वज्ञ है वो क्षायिक ज्ञानी है, यानी उनके कर्म का कोई लवलेश नहीं, कौन से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि। तो मुझे ये कहना है कि जो सर्वज्ञ भी आंख से नहीं देखते, वो तो उनके ज्ञान से देखते हैं, देखते कहो जानते हैं कहो, यानी हमको क्या लगता है साइंस ने प्रूव किया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अरे वो तो दारू पी के सब साइंस का ये निकालते हैं।
यानी जिन वर्गणा से बने ना, जैसे साउंड वेव साइंस ने देखी है, शब्द जो है यानी उसको कैच करने का जो कोई आपके उसमें फिगर भी दिखते जो ऐसा कुछ, परंतु जिन वर्गणाओं से शब्द बना है वो वर्गणा तो कितनी सूक्ष्म है, अनंत अनंत वर्गणाओं का एक एक वो शब्द स्कंद हो गया, तो वर्गणाओं को तो अभी उनको पता नहीं चला है। जैसे औदारिक शरीर है, शरीर तो दिख रहा है पर इसके अनंत परमाणु हर समय जीव ग्रहण कर रहा है और छोड़ रहा है, ग्रहण तो उसी प्रदेशों में से आ रहा है पर छूट के पूरे लोक में कहीं पर भी जाते हैं, वो कहाँ दिख रहे? आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ से कुछ छूट कर जा रहा है, हर समय अनंत जा रहे हैं, ख्याल में आते हैं बात? औदारिक के जा रहे हैं, औदारिक के भी जा रहे हैं,
मेल बेटा
देखो ये विषय ऐसा है ना, क्योंकि केवल ज्ञानी क्या क्या नहीं जानता, वो तो एक परमाणु तक को सबको जानता है। फिर एक परमाणु तक तो सर्वावधि वाला भी जानता है, सर्वावधि ज्ञानी भी ये सब कर्मों को जान सकते हैं। हाँ, परंतु वो मुनि होते और सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञानी वाले होते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यानी हम इसमें से कहाँ से बात निकली थी, कर्म की पर्याय कर्म से होती, जीव की पर्याय जीव से होती। जीव की तो अपने में रहता है, परंतु वो कर्म को ऐसा निमित्त रूप से पाया जाता है, उसकी अवस्था होती है। कथन में होगा, जीव ने इसको ये ऐसा बांधा, उपशमाया, उसका क्षय किया, ये कथन पद्धति जिनवाणी की कथन पद्धति, परंतु वो उपचार का कथन है। यहाँ बताया था ना कि जीव का वो ध्वनि भी जीव भगवान की क्यों कहने आती है, वो तो सहचर देखकर, निमित्त देखकर ऐसे कहने की पद्धति है। देखो यहाँ कहाँ पर पढ़ रहे थे हम,
पेज नंबर
24 पर आए थे, वो विकृत अवस्था की बात आई। आगे इन्हें विभाव कैसे, पहली टीका में आवी गयु छे, रूप अने ज्ञानी टीका में पहला बे आवी गया छे, त्यां सर्वद्रव्य न लेता रूप अने गुण लीधा, एटले पछी अहीं सर्वद्रव्यो लीधी, सर्वद्रव्यो लीधा चाहिए, द्रव्यो लीधु के द्रव्यो लीधा, पण द्रव्यो अनेक वचन है, लीधु कैसा हो, द्रव्यो अनेक वचन है, लीधा चाहिए कि लीधु चाहिए, द्रव्यो लीधु तो गुण के लिए लीधा क्यों लिखा, रूप अने गुण लीधा एटले दो हुए ने, एटले लीधा, एटले पछी अहीं सर्व द्रव्यो, तो क्या लीधु चाहिए, अच्छा लीधु करो, चलो इसीलिए वही तो मैं कहते द्रव्यो लिखा है ना, लीधा चाहिए। ये अनेक वचन है ना द्रव्यो, पण सर्व द्रव्य मां रूप वर्ण गंध रस ने ज्ञान ए बे ने विभाविक पर्याय हो छे। क्या कहना चाहते हैं, ये रूप वर्ण गंध रस ये पुद्गल के हो गए, ज्ञान है वो जीव का हुआ, सब में विभाव और स्वभाव दोनों रखेंगे। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं तो विभाव गुण कहेंगे उसको, और केवल ज्ञान को स्वभाव गुण कहेंगे। एम पाठ मां टीका मां छे, ए आवे त्यारे बात करशु, यानी वो तो आने वाली बात है तब उसकी विशेष बात करेंगे। अत्यारे चालतो विषय लई है, और ये भी चालतो विषय हम सोमवार को लेंगे, आज बहुत विषयांतर हुआ ना, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है तो जितना पढ़ेगी उतना कम लगता है। अभी सुबह तो हमारी एक कर्म बनता है, उसका जो जघन्य स्थिति बनती है, तो वहाँ कौन कौन से कर्म बन रहे, टोटल सारे 148 का हिसाब लगाएंगे, और फिर जघन्य बन देंगे कि अजघन्य, अजघन्य बनते तो कितना अधिक बन देंगे। अरे इतना विस्तार चल रहा है हमारा, चलो यहीं रुकेंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नहुं सदा देत हूँ। अरविंद।